हेलो, आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। ब्रेन ट्यूमर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनके कारण क्या परेशानी आ सकती है, इनका इलाज कैसे होता है और इसका आउटकम क्या होता है। ब्रेन ट्यूमर्स, जैसे शब्द बोलते हैं, दिमाग के ट्यूमर्स को बोलते हैं। जो भी कोई ट्यूमर हमारे खोपड़ी के अंदर होता है उसको हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, जो ट्यूमर हमारी खोपड़ी के अंदर ही या ब्रेन से ही शुरू हुआ है, या सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर, जो शरीर में कोई और बीमारी, कोई और कैंसर के बाद हमारे दिमाग के अंदर फैल गया हो। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर होते हैं, लेकिन उनका इलाज प्राइमरी ट्यूमर के हिसाब से चलता है, प्राइमरी बीमारी के हिसाब से चलता है। उसके बारे में हम आगे अब डिस्कस नहीं करेंगे। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर में सबसे पहले जानने की बात यह है कि 70% से ज़्यादा ट्यूमर्स नॉन कैंसरस होते हैं। मतलब अगर उन ट्यूमर्स को सही टाइम पे इलाज दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो पेशेंट का क्योर हो सकता है। अराउंड 30% ट्यूमर्स हमारे कैंसरस होते हैं, जहाँ पे सर्जरी और बाकी कई तरह के इलाज उसमें करने की जरूरत पड़ सकती है। ब्रेन ट्यूमर्स का सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रेन ट्यूमर्स के सिम्टम्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्यूमर की लोकेशन की वजह से, मतलब कि दिमाग के किस हिस्से को वो इफेक्ट कर रहा है उसकी वजह से जो सिम्टम आते हैं, और एक जनरल स्पेसिफिक कि ट्यूमर के साइज की वजह से जो परेशानी आती है। अगर हम देखें तो दिमाग के हर हिस्से का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर काम होता है। कोई हिस्सा हमारा हाथ पैर कंट्रोल करता है, कोई हमारा बोलना कंट्रोल करता है, कोई हमारी आंखों को कंट्रोल करता है। तो अगर ट्यूमर हमारे हाथ पैर के एरिया में होगा तो शायद हमारे हाथ पैर में कमजोरी आ सकती है, बोलने के एरिया में होगा तो हमें बोलने में परेशानी आ सकती है, हमारे आंखों के पास होगा तो हमारी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। दूसरा हो गया ट्यूमर के साइज की वजह से। ये सिम्टम्स, जैसे मान लीजिए ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाए तो हमारे दिमाग के अंदर का, हमारे खोपड़ी के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। उसके कारण हमें हेडेक्स, हमें वॉमिटिंग, हमें आंखों में धुंधला दिखना, इवन बेहोशी भी आ सकती है। हो सकता है कि ट्यूमर की वजह से ब्रेन को इरिटेशन हो और हमें मिर्गी या दौरों की कंप्लेंट्स हो, और उसके वजह से हमें ट्यूमर की डायग्नोसिस की जा सकती है। कई बार ट्यूमर्स हमारे सुनने की क्षमता कम कर सकते हैं, कई बार हमें पानी का रास्ता ब्लॉक होने के वजह से भी हेडेक्स या वॉमिटिंग हो सकते हैं। ट्यूमर का डायग्नोसिस एमआरआई या सीटी स्कैन से द्वारा किया जाता है। एमआरआई ही सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड रहता है कि उसमें हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस प्रकार का ट्यूमर है, कहाँ का ट्यूमर है, और उसमें उसके हिसाब से हम नॉर्मली सर्जरी के लिए डिसाइड कर सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको एंजियोग्राफी या एमआर एंजियोग्राफी पर एडवाइस की जाए ट्यूमर के बारे में और जानकारी निकालने के लिए। अब आए हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादातर ट्यूमर्स को सर्जरी ही इनका मेन ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी को हम क्रेनियोटमी बोलते हैं। क्रेनियोटमी मतलब क्रेनियम, खोपड़ी को हम इंग्लिश में क्रेनियम बोलते हैं। जब भी हम ब्रेन खोपड़ी को खोला जाता है तो उसको क्रेनियोटमी बोला जाता है, मतलब क्रेनियम को खोलना, ऑटमी मतलब खोलना। तो कोई भी ट्यूमर होगा उसको जगह के हिसाब से, जिस जगह ट्यूमर है उसको हिसाब से खोपड़ी खोल के ट्यूमर को निकालने का प्रयास किया जाता है। इसको हेल्प करने के लिए, इसमें हमारी सेफ्टी बढ़ाने के लिए हम पे काफ़ी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे ये ट्यूमर की ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जा सके और उसको और एफिशिएंटली और सेफ्टी से निकाला जा सके। इन सब में कुछ चीज़ें ऐसे माइक्रोस्कोप से हम हर चीज़ को मैग्नीफाई करके देखते हैं, जिससे कि हमें सूक्ष्म बड़ी दिखाई देती है। फिर होता है नेविगेशन। हर कोई आजकल गूगल को देख के रास्ते पे जाता है कि हमें कहाँ जाना है, वैसे ही ये डिवाइस हमें बताती है कि हम ट्यूमर में कहाँ पे ट्यूमर है दिमाग के अंदर और आसपास के कौन से एरियाज़ को हमें सेफ रखना है। ट्यूमर फ्लोरोसेंस एक नई टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे हम एक पेशेंट को डाई देते हैं जिससे कि ट्यूमर अलग से चमकता है, तो ट्यूमर और नॉर्मल ब्रेन के बीच में हमें डिफरेंस साझा साफ दिखाई जा देता है, जिससे कि हम नॉर्मल ब्रेन बचा सकते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव एमआरआई या सीटी, जिससे हम सर्जरी के दौरान एमआरआई करके देख सकते हैं कि हम सही जगह है कि नहीं, कि हमने पूरा ट्यूमर निकाला कि नहीं। और अवेक केनियोटमी, जहाँ पे पेशेंट को सुलाया नहीं जाता है। मान लीजिए ट्यूमर बहुत क्रिटिकल एरिया में हो तो पेशेंट होश में होता है और वो काम करता रहता है, और जबकि हम ट्यूमर निकालते रहते हैं देखने के लिए कि वो एरिया डैमेज नहीं हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम आजकल छोटे से छोटे कट में बिना बाल को शेव किए, ये आई थिंक सबसे ज़्यादा लोग गलतफहमी है कि बालों को गंजा करना पड़ता है। नहीं, आजकल रूटीन सर्जरी में कोई भी गंजा नहीं करता है। बिना बालों को शेव किए छोटे से कट से सर्जरी की जाती है। अगर हम देखें, ज़्यादातर पेशेंट्स हॉस्पिटल में मुश्किल से 5-6 दिन रहते हैं, और उसके बाद घर चले जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ को भी जीने लगते हैं। कुछ ट्यूमर्स, स्पेशली जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं, उसमें हो सकता है कि सर्जरी के बाद और इलाज के लिए भी एडवाइस किया जाए। उसमें रेडिएशन थेरेपी होती है, जहाँ पे रेडियोथेरेपी से जो बचे हुए सेल्स होते हैं उनको मारा जाता है, कीमोथेरेपी होती है, और एक चीज़ होती है रेडियो सर्जरी। कुछ ट्यूमर्स जो हमारे काफ़ी क्रिटिकल लोकेशन पे हो, वहाँ पे हम हो सकता है कि सिर्फ एक हाई डोज रेडिएशन देके उस ट्यूमर को हम ख़त्म कर दें या कंट्रोल कर दें। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी डायग्नोसिस है, इसको सुन के घर वाले, पेशेंट और सब लोग काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि आजकल के ट्रीटमेंट के बाद ज़्यादातर ट्यूमर्स हमारे क्योरेबल हैं, और बहुत पेशेंट आपको ऐसे होंगे जो उनकी सर्जरी के बाद पता भी नहीं चलता सर्जरी भी, और एक अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो जस्ट बिकॉज हमें ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है, उसकी वजह से हमें डरना नहीं चाहिए। सही जगह पे, सही टाइम पे और सही जग सेंटर पे, जहाँ पे हमारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो, जहाँ पे आपका सबसे सेफ ट्रीटमेंट हो सके, वहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका इलाज सही हो सके। थैंक यू।
इस ऑडियो को IVR पर पसंद कर इसे आगे भेजना चाहते हैं तो 5 दबाए। इसका ऑडियो ID नंबर आपको SMS किया जाएगा, और अगर आप इनेबल वाणी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो पसंद किए गए ऑडियो को फॉरवर्ड करें।